नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः नमः ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक 19 और 20। 19 श्लोक में तात्पर्य नहीं है, 20 श्लोक में तात्पर्य है। पहले मैं 19 श्लोक पाठ कर लेता हूँ, 20 श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ पढ़ने का पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये गद्य में है, पद्य में नहीं है। जस्तिह वैस्तेनय बलाद्वा हिरण्यरत्नादिनि ब्राह्मणस्य बाप हरन्त्य नेश्य बानपदे पुरुषस्तम पुत्र राजन्यम पुरुषा अयस्मैरग्निपिण्डे संदशैस्तुचि निकुशन्ति। इसका अनुवाद, हे राजन, जो पुरुष आपत्तिकाल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वो संदश नामक नरक में रखा जाता है। वहाँ पर उसकी चमड़ी संडेसी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। 20 नंबर श्लोक। जस्तिह वह अगम्यम स्त्रियम गम्य वा पुरुषम जोषी दिव्य अभिगछति ताव मूत्र कषाया तड़यंतस्मि गम्य सुम्या लोहमया पुरुषम आलिंगयन्ति स्त्रियः च पुरुष रूपया सुम्या। शब्दानुवाद, अनुवाद और भावार्थ अभयचरण भक्ति विद्वान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यह, जो कोई तो लेकिन यह इस जीवन में बा अथवा अगमयाम अनुपयुक्त स्त्रियम स्त्री को अगम्याम अगम्या बा अथवा पुरुषम पुरुष को जोषित स्त्री अभिगच्छति संभोग के लिए पास जाते हैं, तो ये दोनों अमूत्र अगले जीवन में कषाया कुड़ों से ताड़यंत पीटते हुए तिगमया अत्यंत तप्त सुम्या मूर्ति द्वारा लोहमया लोहों से निर्मित पुरुषम पुरुष आलिंगयंती आलिंगन करते हैं स्त्रियम स्त्री को च भी पुरुष रूपया पुरुष के रूप में सौम्या मूर्ति द्वारा अनुवाद। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संभोग करते हैं तो मूर्ति के बाद जमराज के दूत उसे तप्त सुरमे नाम का नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री से और स्त्री को ऐसी पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। बेविचार के लिए ऐसा ही दंड है। सामान्यतः पुरुष को अपने पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। वैदिक नियम के अनुसार पराय स्त्री मातृतुल्य होते हैं और अपने मां बहन तथा पुत्री के साथ संभव करना एकदम वर्जित है। यदि कोई पराय स्त्री के साथ ऐसे अवैध संबंध रखता है तो यह कार्य अपनी मां के साथ संभव करने के तुल्य माना जाता है। ऐसे कार्य अत्यंत पापमय है। यही नियम स्त्री पर भी लागू होता है। यदि वह अपने पति को छोड़कर पर पति से संभव करती है तो यह कार्य अपने पिता या पुत्र के साथ जौन संबंध रखने के तुल्य है। अवैध स्त्री पुरुष संभोग सदैव वर्जित है और जो कोई ऐसा करता है उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदे अहम श्री गुरु श्रीतपदकमलं श्री गुरो वैष्णवांश श्री रूपं सागरदत्तं सागण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदन सहगना ललिता श्री विशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को कृष्ण बलराम का मंदिर कैसे और से हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी चर्चा का विषय चल रहा है नारकीय लोक का वर्णन। खतरनाक स्थिति है कि जो कि हमें ये चीज़ सुनना नहीं चाहिए, सुनने से तो डर लगता है सही, फिर भी भागवत में क्यों दिया गया? भागवत में ऐसा चीज़ नहीं देना चाहिए। संसार में लोग बोलते हैं भागवत में सिर्फ भक्ति का व्यक्ति और कुछ चर्चा नहीं है, ऐसा नहीं। संपूर्ण जगत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसा बिताना है, पारिवारिक जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, सारा चीज श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है। किस प्रकार प्रभु को प्राप्त करना वो भी भागवत में है। और इसलिए नरक का वर्णन देना जरूरी है। जो व्यक्ति इस चीज को पढ़ के समझ ले जो कि इसी प्रकार के पाप और नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी आपका सामने तो मैं बोल चुका हूँ, जो कि हमारा 15 दिन का टॉपिक था मृत्यु का बाद यात्रा। कितने भक्त लोग सुने हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। मृत्यु का बाद यात्रा सेमिनार हुआ था, उसमें 15 दिन लगभग इसी चीज के बारे में चर्चा चल रहा था, और फिर भी बहुत सारे भक्त लोग नहीं सुन पाते हैं। अभी हम लोग का टेक्निकल में प्रॉब्लम है, जो कि FM नहीं चल रहा है, बाहर में जो भक्त लोग रहते हैं नहीं सुन पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, वो ठीक करने के लिए हो सकता है कितना महीना लगेगा, क्योंकि मशीन खराब हुआ, वो US से आने वाले है, विदेश से आएगा तब जाकर ठीक होगा FM के लिए। फिर भी हम लोग चाहते हैं सभी यहीं पे आके कथा सुने। अभी सेमिनार नहीं है, बाद में कभी करेंगे। तब ये जो नारकीय वर्णन है आप लोग सुनते आ रहे हैं, तब आज जो दो श्लोक है, दो नरक का बारे में वर्णन है। पहला 19 श्लोक में कहते हैं, जो पुरुष ब्राह्मण का घर पे और किसी भी व्यक्ति से रत्नों को चोरी करता है, गोल्ड चोरी करता है, चांदी चोरी करता है, जैसे सब धातु वस्तु को चोरी करता है, तो वो व्यक्ति की संदस नामक नरक में रखा जाता है। और फिर क्या कहा जाता है, वहां पे कैसा दंड दिया जाता है, आप लोग कभी कभी रोटी सेकते हैं, रोटी को गर्म करते हैं, चिमुटा लगाते हैं, बिना चिमुटा में रोटी तो सेक नहीं सकते, चिमुटा तो लगाना पड़ता है, सही ना, ऐसा वाला चिमुटा आता है दबा के फिर रोटी को। उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे संडे से समझते हैं जैसा, हाँ तो समझ लेते हैं। और व्यक्ति को इसी प्रकार संडे से पकड़ के लेके गर्म में तपाते हैं आग में, और उसका शरीर का जो शरीर है ना, शरीर का जो मांस है खंड विखंडित हो जाता है, पिघल जाता है। और आपका मन में प्रश्न आएगा, आप सोचते होगा मरने का बाद तो यहां पे 4 लोग लेकर जाते हैं, ये कैसी घाट में जला देते हैं, फिर इसको नरक कौन सा कौन व्यक्ति लेकर जाता है, सोचते होगे। लेकिन ये शरीर यहीं की यहीं, ये शरीर नरक नहीं जाता है। नरक कौन जाता है, आत्मा को, जीवात्मा को एक ताड़ना शरीर दिया जाता है, एक ताड़ना शरीर जिसमें जंत्रणा को भोगना है, इसको लेकर जाते हैं जमदूत। ये शरीर तो यही आपका रिश्तेदार लेकर लेकर जाएंगे, जला देंगे। और फिर कहते हैं, और क्या होता है श्लोक में कहते हैं, गृहे स्वर्था निवर्तन्ते श्मशाने च विबन्धवः शरीरम काष्ठम आदते पापम पुण्यम सह व्रजत। इसका अर्थ क्या है, अपना कर्म का स्वयं ही भोग करता है, अपना जो कर्म किया इसको स्वयं को भोगना है। आपके लिए कोई भोगेगा क्या, नहीं भोगेगा क्या, हमें खुद का कर्म खुद को भोगना आता है। एक धन घर में छूट जाता है, जितना धन कमाया घर पे रहेगा, घर पे नहीं रहेगा तो बैंक में रहेगा, बैंक में नहीं रहेगा तो पत्नी का नाम रहेगा, पत्नी का नाम से नहीं रहेगा तो पति का नाम से रहेगा, नहीं तो बेटा का नाम से रहेगा, है ना, धन छूट जाएगा। फिर भाई बंधु वो जाएंगे श्मशान में, छूट जाते हैं श्मशान तक, उसका बाद वो छूट गए। इसका बाद शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, ये जो शरीर जाएगा लेकर जाएंगे बंधु बांधव रिश्तेदार, वो जो लकड़ी उसको सौंप देंगे। और जीव का साथ किया जाता है पाप और पुण्य, सिर्फ पाप नहीं, पाप और पुण्य जो किया वो जीवात्मा का साथ। इसीलिए कहते हैं ये शरीर यहीं जलाएंगे, लेकिन आपका साथ एक ताड़ना शरीर दिया जाएगा जीवात्मा को, इसको लेकर जमदूत दंड देते हैं नरक में। और नरक कौन सा व्यक्ति जाता है, कोई पुण्य करने वाले व्यक्ति नरक जाता है, हाँ जी नहीं जाता है ना, कौन जाता है, पापी व्यक्ति के लिए नरक खोला गया। और नरक फिर पशु भी नहीं जाते हैं, नरक सिर्फ मनुष्य के लिए, नरक सिर्फ मनुष्य के लिए, फिर नरक का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नरक? न युक्त अर्क इक्वल टू नरक। न मतलब नहीं, अर्क मतलब सूर्य, जहां पे सूर्य का दर्शन नहीं होता है वो जगह का नाम क्या दिया गया? समझ में आया? सूर्य का दर्शन नहीं होता है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद कोटेशन करते हैं, मां का गर्भ को नरक का साथ तुलना किया गया। नरक नहीं है लेकिन नरक का साथ तुलना किया गया। हमें 9 महीना तक कहां पे थे, है ना? 9 महीना तक नरक में, प्रत्येक समय में, प्रति क्षण में प्रभु की ही प्रार्थना किया, प्रभु की ही प्रार्थना किया। एक सेकंड भी कोई भी व्यक्ति प्रभु को भूला नहीं उसी टाइम पे, इतना यंत्रणा दिया जाता है। जन्म होने का पहले जितना यंत्रणा दिया जाता है, मृत्यु होने का पहले उसका 1000 गुना दुख दिया जाता है। मृत्यु होने का पहले चालू हो जाता है। अभी आपके पास नोटिस नहीं आया, नोटिस कब आता है? नोटिस आ जाता है, जमदूत नोटिस भेज देता है पहले। 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, नोटिस पहले आ जाएगा, तो चालू हो जाएगा सारा। इतना यंत्रणा दिया जाता है। तब गर्भ के अंदर में रह के प्रति मुहूर्त में प्रभु की ही प्रार्थना करता है, प्रभु ये दुख से बचाइए, प्रभु दुख से बचाइए। हम लोग को अभी तो 16 माला के लिए हम लोग को 2 घंटा की 3 घंटा टाइम लेते हैं कि कर लेते हैं बस, लेकिन यहां पे जब गर्भ के अंदर में व्यक्ति रहता है 24 घंटा के अंदर कितने बार बोला होगा प्रभु बचाइए बचाइए, हमें गिन नहीं सकते। और प्रभु सहन नहीं करते हैं, प्रभु सामने में प्रकट होते हैं, कहते हैं मैं दुख से बचाने के लिए आया, मैं दुख से बचाऊंगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? प्रत्येक व्यक्ति कहने लगे मैं आपका भजन करूंगा, बिना कहते हुए बाहर नहीं निकल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति संकल्प लेता है मैं आपका भजन करूंगा। भगवान के सामने ईमानदारी का बात किया, ईमानदारी बात किया, लेकिन भगवान उधार किया। भगवान ने बोले मैं दुख से बचाने के लिए, इसलिए मेरा नाम है दुखारी। क्या नाम है? कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण का नाम था कंसारी। इसी प्रकार भगवान दुख से बचाने के लिए भगवान का दूसरा नाम पड़ा दुखारी। अग को मारने के लिए अघारी पड़ा, अग को मारने के लिए अघारी पड़ा, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का नाम दुखारी, दुख से बचाया। और गर्भ से जब बाहर निकाले, कहां गया भजन? कहां गया भजन? भजन छोड़ दिए, भोजन में जोड़ गए। तब यहां पे यही वर्णन देते हैं, जंत्रणा का समय में प्रत्येक व्यक्ति भगवान को चिंतन करता है। इसलिए पापी व्यक्ति तो नरक जाता है, लेकिन पाप करने का पहले व्यक्ति सोचता है कभी? कभी सोचता है? कभी नहीं। आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखेगा, कर लेता है। इसको कहते हैं मनमानी, इसको कहते हैं मनमानी। मन का ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, और मन का ऊपर प्रभाव कब पड़ता है? संग से। इसलिए कहते हैं 2 प्रकार के संग है, एक ही कुसंग, एक ही सत्संग। एक कुसंग, एक ही सत्संग, ये मन का ऊपर प्रभाव डालता है। मन का ऊपर प्रभाव डालने के बाद फिर कर्म करता है, मन जाके फिर कर्म करेगा। मन डायरेक्ट कर्म नहीं करेगा, मन क्या करेगा? पंपटिंग करेगा। किसको? सारा इंद्रिय को। फिर इंद्रिय कर्म करेगा, इंद्रिय कर्म करने के बाद कर्म का फल फिर आपको लगेगा। इस प्रकार और शास्त्र में यही वर्णन है। पहला 19 नंबर श्लोक में ये दे दिए, जो रत्न चोरी करता है, सोने को चोरी करता है, संदस नाम का नरक में जंत्रणा भोगना होता है। भोगने का बाद उसको क्या फिर शरीर मिलेगा? कीड़ा बनना पड़ता है, कुर्मी, कीट और पतंग जोनि में आएगा फिर। ये 19 नंबर श्लोक का वर्णन। और 20 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? यदि एक पुरुष स्त्री का साथ अवैध विधि पूर्वक नहीं, अवैध, अवैध मतलब, अवैध मतलब क्या है, विधि मतलब क्या है, अविधि मतलब क्या है, शादी नहीं हुआ, बिना शादी करके सेक्स कर रहा है, यही हो गया ना अविधि। विधि पूर्वक मतलब क्या है, शादी होने का बाद पति पत्नी से मिलन होने से इसको विधि कहा गया, विधि से हुआ। अवैध मतलब पर पत्नी, पर पति से, इसको कहते हैं अवैध। और दूसरा अवैध क्या है, जो शास्त्र का विधि का अनुसार नहीं करता है, शास्त्र का नियम को फॉलो नहीं करता है। दूसरा में कहते हैं जो शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुई और उसका साथ जो शारीरिक का संबंध रहता है, वो व्यक्ति को कौन सा नरक में भेजा जाता है। दो प्रकार के ये सिर्फ हम बोल देते हैं अवैध स्त्री संग, दो प्रकार के अवैध। एक ही है कन्या, कन्या मतलब जो अभोग्य स्त्री है, अभोग्य मतलब जो भोगा नहीं, भोगा मतलब क्या है, जो शादी नहीं हुई। ये 20 नंबर श्लोक का ये चर्चा है। और उसको कौन सा नरक में देते हैं, सप्त सुरमी नाम का नरक भेजा जाता है। जो शादी होने का बाद फिर परपति और परपत्नी का साथ करता है, इसको अंधतामिश नरक में भेजा जाता है। और ये दोनों नरक में समय दिया जाता है, इतना समय तक उसको यंत्रणा सहन करना पड़ेगा, भुगना पड़ेगा। इसका बाद क्या होता है, पर स्त्री पर पुरुष गमन करने के बाद अंधता मिश्र नरक में बास करेंगे, बास करने का बाद फिर इसको कौन सा शरीर मिलेगा, फिर ऐसा मतलब कहते हैं अरण्य, अरण्य मतलब क्या है, जंगल, निर्जन स्थान, निर्जन देश में ब्रह्म राक्षस की जोनी प्राप्त करेगी, दूसरा पति और दूसरा पत्नी का साथ करने मात्र से। और जो कन्या के साथ जौन संबंध करता है, सप्तपुर्मी सुरमी नाम का नरक में यंत्रणा मिलेगा। इसका बाद वो व्यक्ति मूत्र कुछ और नौ पोषकता का विकार होगा वो व्यक्ति को, इसी प्रकार वो जन्म लेगा फिर नेक्स्ट। तो फिर कहते हैं हम जब भी कुछ पाप करते थे हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन कभी हमें छिप कर करना चाहते हैं हर चीज को, चोरी करते तो कोई नहीं देख ले, हम सोचते कोई नहीं देख रहा है कि नहीं, लेकिन हमारा पीछे 12 साखी है। कितना साखी है, 12 साखी है, ये 12 साखी सब कुछ देखते हैं, इससे बच नहीं सकते हैं। ये 12 साखी सभी के साथ कौन कौन है, 12 साखी कौन कौन है, सूर्य, सूर्य से आप छिप सकते हैं, चंद्र, चंद्र से छिप सकते हैं, आकाश, जो भी कुछ करते हैं आकाश के नीचे ना, और वायु, अग्नि, संध्या, दिन, रात, और दीघ समूह, और जल, और पृथ्वी, और धर्म, ये टोटल 12। हम सोचते हैं हमको कोई नहीं देख रहा है, हम ऐसा ही कर लेते हैं, उनका नजर आपका ऊपर, इसलिए जो 12 साखी है ना, आपका 12 साइड में बड़ा बड़ा सीसी कैमरा लगा हुआ भगवान ने ऐसा सीसी कैमरा लगा हुआ, वो कभी डिलीट नहीं होता है। हमारा मंदिर से तो कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है, सीसी कैमरा फेल हो जाता है,
पता नहीं चलता है मेरा बीट भी अगर चोरी हो गया नहीं मिल रहा, थोड़ा देखिए ना फिर भी। लेकिन ये जो भगवान ने ये 12 सीसी कैमरा लगाया ना, ये कभी भी ना डिलीट होता है ना कभी खराब होता है, ना इसका तार को कोई बंदर काटता है। वृंदावन में तो सारा तार बंदर काट देता है। ये फिर कैसा है, बिना वायर वाले, बिना वायर वाले क्या बोलते हैं हम लोग, वायरलेस है ना, ये वायरलेस लगा हुआ। हाँ सोचे इसे बच नहीं सकता है, इसलिए भक्त के लिए सावधान। भक्त सोचता है मैं तो हरिनाम कर रहा हूं मेरा उद्धार हो जाएगा। भाई हरिनाम तो कर रहा है ये तो सत्य है, इसका साथ साथ कुछ रूल्स दिया गया। वो रूल्स क्यों दिया गया, प्रभुपाद ने जो रूल्स दिए सिर्फ ये संस्था के लिए नहीं, ये शास्त्रगत प्रमाण है। भागवत में प्रथम स्कंद में ये 4 नियम दिया गया, प्रथम स्कंद में ये 4 नियम दिया गया। इसे तो दूर होना आपको, फिर जानकारी मिलने का बाद ये 4 नियम से बच के भगवान का नाम करने से प्रभु के पास जाने के लिए शास्त्र तो बता दिया, लेकिन ये 4 नियम को तो कठोरता का साथ पालन करना पड़ेगा ना। और जानते हुए नहीं करते हैं फिर डबल रिएक्शन लगेगा, डबल रिएक्शन। हमें जान बूझ कर कुछ कर रहा है तो, जो अज्ञानता किया उसको 1% पाप लगेगा, जो जानकर किया उसको 2% पाप लगेगा। आप सोचते हैं हमें भक्त हो गए, तिलक लगा दिया और तुलसी माला पहन लिया, चलो भाई हमें दूसरा का पत्नी को उठा कर ले लेते हैं, दूसरा का पति के साथ चले जाते हैं, चलो कोई पाप नहीं लगा, हरिनाम जप लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोरदार जपता है। देखा होगा आप लोग, लेकिन बहुत सावधान। श्रीमद् भागवत में एक जगह में आता है, एक श्लोक कोटेशन करते हैं विष्णु पुराण से, भगवान कब प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न तब होते हैं, कहते हैं पर पत्नी पर द्रव्य पर हिंसा से जो मतिम न करोति पुमान भूप तुष्यत तेन केशव। जो व्यक्ति पर पत्नी और पर पति पर द्रव्य और पर हिंसा से लिप्त तो नहीं होता है उसका ऊपर भगवान जल्दी से जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमें तो सुबह से शाम तक लगे पड़े हैं, है ना, सुबह से शाम तक लगे पड़े, और हमारा नजर बहुत तीक्ष्ण जाता है, इतना नजर तीक्ष्ण नहीं जाएगा मतलब देवता लोग का भी, जमदूत का भी इतना नजर तीक्ष्ण नहीं जाएगा, हमारा नजर इतना तीक्ष्ण होता है। आप लोग को सुना होंगे अकबर और बीरबल कहानी, सुने ना, इसको बताना नहीं पड़ेगा। अकबर और बीरबल किस प्रकार, प्रभुपाद भी द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में किताब में प्रभुपाद कोटेशन करते हैं, एक स्त्री एक पुरुष का प्रति आकर्षण होता है, एक पुरुष एक स्त्री का प्रति, ये रहेगा भगवान ने इस प्रकार बनाया। जब ये धरती को बनाया, ये संसार जब रचाया भगवान ने, तब हम पहला सृष्टि सिर्फ पुरुष ही किया था, सिर्फ पुरुष सृष्टि को सृष्टि में किसको किया था, सिर्फ पुरुष ही थे। भगवान हैरान हो गए कैसा संसार बढ़ेगा, तब फिर बाद में नारी को सृष्टि किया, स्त्री को, यह आकर्षण रहेगा। लेकिन भक्त थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, और वो जो हाँ मैं कभी भी ऐसा ड्रेस ऐसा चेहरा ऐसा अपना सौंदर्य को बढ़ा के हमें कभी भी कोई पुरुष को आकर्षण नहीं करें, और कोई पुरुष भी हमेशा के लिए देखना चाहिए। जो ब्रह्मचारी बनता है उसके लिए तो बहुत कड़क है, बहुत सारा चीज दिया गया है, ये एक ही प्रकार की नशा है, जो आकर्षण होना एक ही प्रकार की नशा है। और जानते हैं कि नहीं जानते हैं 4 प्रकार नशा है, कोई बता सकता है 4 प्रकार नशा है, ये 4 प्रकार नशा सबके लिए और बहुत खतरनाक है 4 प्रकार नशा, और सबसे ज्यादा नशा खतरनाक है वासना। 4 नशा पहले समझिए, पहला नशा है मदिरा, पहला नशा क्या है मदिरा, दूसरा नशा है वासना, तीसरा नशा है संपत्ति, चौथा नशा है भक्ति। देखिए पहला नशा को आलोचना करते हैं, पहला नशा है मदिरा। मदिरा क्या करेगा, पी लोगे तब शरीर को खत्म कर देगा। मदिरा क्या करेगा, शरीर को ही खत्म कर देगा, लेकिन वासना और संपत्ति सारा जीवन को खराब कर सकता है, सारा जीवन खराब कर देगा। और भक्ति जो है मनुष्य को अच्छा बनाता है, मनुष्य को अच्छा बनाता है। और देखिए पहला दूसरा और तीसरा, पहला मदिरा और वासना और संपत्ति, ये क्या करेगा, ये जो तीन नशा है ये दुर्गति को प्राप्त कराता है, लेकिन चौथा नशा सदगति को प्राप्त कराता है। मदिरा नशा पे जगाई माधाई थे, मदिरा का नशा पे कौन थे, जगाई माधाई, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ पाए, नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ पाए। वासना का नशा पे रावण था, इसलिए प्रभु राम को नहीं समझ पाया। दुर्योधन संपत्ति का नशा पे था, इसलिए भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए। लेकिन भक्ति का नशा पे भक्तजन रहते हैं, भक्ति का नशा पे भक्तजन रहते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी, जिस प्रकार गौतम जी, जिस प्रकार एकनाथ, जिस प्रकार सूरदास, जिस प्रकार नरसिंह मेहता, जिस प्रकार मीराबाई, जिस प्रकार हरिदास ठाकुर, भक्ति का नशा। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ को दर्शन करके जाते थे, अपना कुटिया गंभीरा में जाते थे, तब हरिदास को दर्शन करने के लिए जाते थे। पहले दर्शन करते भगवान को दर्शन करते हैं, इसके बाद भक्त को दर्शन करके फिर अपना गंभीरा जाते थे। तब हरिदास लेटे लेटे प्रभु का नाम ले रहा था, तब महाप्रभु आके पूछते हैं, हरिदास ठीक हो? हरिदास क्या बोलते हैं, बोला ठीक नहीं हूं, ना क्या हुआ, ना मेरा नाम पूरा नहीं हो रहा है। हम ऐसा बोलेंगे, हम तो बोलते हैं नाम पूरा हो गया, अभी मेरा तो माला हो गया। हम होते थे उसी जगह पे, हम बोलते थे फिर हाँ मेरा माला हो गया, अभी मेरा माला पार्किंग में है। हरिदास देखिए यही सब चीज भक्ति का नशा पे जो होता है हमेशा बोलेगा, ये श्रवण का नशा हो ऐसा होना चाहिए। ये एक ही प्रकार की श्रवण का नशा, मैं भागवत कैसा सुनूं, मेरा जो टाइम ही है टाइम पे जाकर पहुंच जाऊं। हम तो देखते हैं घड़ी 9 बज रहा है कि नहीं बज रहा है, आज का प्रसाद भी प्रभु दिया है, यहां पे रखा है बाल्टी में स्वीट। तब चार प्रकार नशा से सबसे मेन नशा है भक्ति का नशा, जो सदगति को प्राप्त कराता है। और जो ये वासना का नशा किस प्रकार का होता है, ये वासना का नशा से व्यक्ति बचना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। एक ही कहते हैं, और ये वासना का नशा पे कभी जात पात भी नहीं देखेगा व्यक्ति, इसको कहते हैं कामांध हो जाता है जब व्यक्ति, तब क्या होता है, प्यास ना जाने धोबी का घाट, नींद ना जाने टूटी का खाट, भूख न जाने झूठा भात, इसकी न जाने जात कुजात। इसका अर्थ क्या है, जब प्यास लगता है तो कोई भी जगह पे पानी पी लेता है, धोबी का घाट भी नहीं देखता है, ये धोबी का घाट है, देखता है क्या, नींद न जाने टूटी खाट, जब नींद आता है वो देखता है क्या, नींद आ गए तो कौन सा टूटा फूटा खाट पे नींद आ जाएगा। और भूख न जाने झूठा भात, जब भूख लगता है ना वो देखेगा झूठा भात को खा लेगा। और इश्क, इश्क मतलब प्यार, जब प्यार हो जाता है कोई जात पात देखता है, कुछ नहीं बस। और जो प्यार शब्द है ये तो हर जगह पे नहीं लगाना चाहिए, बोलते हैं ना सभी लोग बोलते हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऐसा बोलते हैं, अरे लव भाई कौन सा जगह पे लगेगा, श्री कृष्ण और राधा का पास, ये प्रेम है। लव का अर्थ निकालो आप लोग डिक्शनरी से क्या निकलेगा, अभी सांसारिक जगत में सभी जगह पे लिख देते हैं लव लव, अरे लव कहां है, ये लॉब नहीं है, ये लॉस्ट है। और लॉब का फुल फॉर्म क्या है? लॉस आवर वैल्यूबल एनर्जी, लॉब का फुल फॉर्म। वाइफ ही मतलब वाइफ का फुल फॉर्म भी है, विद आई टू इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एनी टाइम। कभी सूचना देता है फाइटिंग के लिए? कभी नहीं। घर पे आते आते झगड़ा हो जाता है, प्यार नहीं करते हैं। एक बार राधा गोविंद महाराज विदेश में गए थे, महाराज बोल रहे थे उनका प्रवचन में, बहुत अच्छा लगा। महाराज जब गए थे गाड़ी में बैठे, एक ड्राइवर क्या करता है, ड्राइविंग कर रहा है, महाराज उसका साइड में बैठे सामना में, और जो ड्राइविंग कर रहा है उसका पत्नी जो है पीछे बैठा है, ठीक है, पीछे बैठा है। महाराज को लेकर गए प्रसाद के लिए, लेकिन वो ड्राइवर ड्राइविंग काम कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, उसका पत्नी को हमेशा थोड़ा मोड़ के बोलते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे हर दो मिनट में आई लव यू क्या बोल रहे हैं? महाराज समझ नहीं आया। महाराज लास्ट में जब प्रसाद महाराज के सामने आ गया, तब महाराज बैठे, उसको बुलाए तो बोला के बैठा के पूछे, बोले प्रभु जी आप क्या ऐसा बोल रहे थे बारंबार आई लव यू, आई लव यू? ना आप जानते नहीं, हमारा अमेरिका में ये संस्कृति है, बारंबार नहीं बोलोगे ना कभी ना कभी पत्नी प्यार नहीं करेगी, ये विदेश का संस्कृति है, हमारा भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारा भारतीय संस्कृति है मर्यादा पुरुषोत्तम का, राम का, जो राम है राम का पद पद पर चलना चाहिए, एक ही पतिव्रता नारी, एक ही पतिव्रता पुरुष कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा है। आज के दुनिया में संपूर्ण उल्टा चल रहा है, क्या कह सकता है। इसलिए तो ये सारा व्यक्ति जानता है नरक वर्णन में बहुत सारा कष्ट दिया जाता है, जब एक पति दूसरा पत्नी का साथ संग करता है और दूसरा पत्नी दूसरा पति का साथ संग करता है, वो सोचता है सिर्फ पति का ऊपर ये मतलब नियम लागू है कि नहीं, पत्नी का ऊपर भी नियम लागू है। प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर दिए ना, दोनों के लिए, दोनों को कोड़े से पिटाई किया जाता है, कोड़े से पीटते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते ऐसे का। हम लोग को एक ही थप्पड़ कोई मार देता था कितना कष्ट होता है, और कोड़े से पिटाई करते हैं, फुर्सत नहीं देते थे, एक सेकंड भी फुर्सत नहीं देते हैं, रोकते नहीं। और कैसा करते हैं, वहां पे जमापुर में एक ही लोहे के खंबा होता है, लोहे का खंबा को उसमें आकृति बनाएंगे स्त्री का आकृति बनाते हैं। आप लोग को देखा होगा हमारा, जब कभी कभी आप लोग बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ खरीदी करने के लिए, सिर्फ कोई कोई दुकान होता है लेडीज शॉप होता है, लेडीज का सारा सामान मिलता है। आप देखोगे एक लेडीज का आकृति बना के उसका बहुत सारा ड्रेस पहना के, जैसे आप देखने मात्र से आकर्षण हो जाओगे और अच्छा लग रहा है मैं इसको खरीद करूंगा। तो उसी प्रकार आकृति जमपुर में नरकालय में ये बनाते हैं लोहे में, और लोहे 100 टेम्परेचर गर्म रहता है, पूरा रेड ही रेड। और इसको दूसरा पति को ला के जिन्होंने संग किया, इसको ला के इसको आलिंगन कराते हैं, और वो भी नीचे गरम ऊपर गरम लाठी भी गरम सब तो गरम ही गरम, वहां पे सहन नहीं कर सकते। इसीलिए इससे बचने के लिए हम कम से कम अपना सरल मार्ग को पकड़ लेना चाहिए। ऐसा बाय चांस ये भी प्रमाण दिया गया, महाराज एक बार और एक बात बताए, बोले पति को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। पति चोरी करे, लंगड़ा हो, इनकम नहीं कर पा रहा है, कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। अंधा भी हो जाए उसको भी त्याग नहीं करना चाहिए कभी भी। महाराज बोल रहे थे उनका भागवत लेक्चर में ये सारा चीज, पतिव्रता बनना है, पति को संतुष्ट करना। और दूसरा अर्थ में कहते हैं, हम सभी लोग को बोलते हैं हमें अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का अर्थ क्या है? अर्धांगिनी का अर्थ क्या है? आधा लेना। किसका आधा लेना? ड्रेस का आधा लेना? नहीं, पैसा का आधा लेना? पति का क्या आधा लेना? शरीर का आधा लेना? पुण्य का आधा लेना? पुण्य करेगा तब ना, पति पुण्य करेगा तब ना। फिर भी पति का पुण्य शास्त्रगत प्रमाण है, पति का पुण्य जितना करेगा उसका आधा फल पत्नी को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पत्नी सही से सेवा करने से, ऐसा नहीं झाड़ू उठा के सेवा करके, ऐसा नहीं मिलेगा। पत्नी को सही सेवा करने से पति का आधा पुण्य पत्नी को मिलेगा, ये सत्य है, ठीक है। लेकिन पति का जितना सब पाप है पत्नी को नहीं मिलने वाला, लेकिन उल्टा है। पत्नी का जितना पुण्य पति को पुण्य नहीं मिलने वाले, लेकिन पाप जितना करेगा ना पति को इसका आधा मिलेगा। बड़ा डेंजरियस परिस्थिति है। इसलिए पति पत्नी को अच्छा से संबंध बना के, है कि नहीं, जैसा महाराज बोल रहे थे लव यू ऐसा लव करते हुए रखना चाहिए, नहीं तो बाई चांस आपका हाथ से छूट गया फिर उनका सारा आधा पाप पति को मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान। एक ही भक्त था, ब्रह्मचारी था, बुरा नहीं मानना कोई भी, इसी सत्य घटना है, ब्रह्मचारी था। पते होते हुए उसका मन में फिर विकार आया, तब बहुत दिन ब्रह्मचारी रहा, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं बोल सकता, किसी भक्त का साथ नहीं बोला, मन से तो है विकार। तो फिर एक बार क्या किया, एक बार जाके गुरु को बोला, बोला मेरा मन में आया मेरा को शादी करना है। ठीक है भाई, शादी करना है तो ठीक है, शादी कर लीजिएगा। कर लिया। करने के बाद है, क्योंकि और कोई जगह पे नहीं बता सकता, लेकिन गुरु को बताया, गुरु तो परमिशन दे दिया, बोला ठीक है शादी कर लिया। लेकिन उसका मन में आया बाई चांस मैं तो शादी कर लिया, मेरा मन में जैसे प्रकार विकार आ रहा था और कोई ब्रह्मचारी का मन में ऐसा विकार आता होगा, बाई चांस मेरा पत्नी को मैं छोड़कर जाता हूँ, बाई चांस दूसरा ब्रह्मचारी मेरा घर में घुस गया तो। इसलिए उन्होंने क्या करता था, जब भी काम में जाता था उसको लॉक करके जाता था, और जब काम से लौटता था फिर लॉक खोलता था। एक बार उसका साथ हमारा मिलना जुलना हो गया, मेला और सब ठीक ठाक है ना, मतलब बहुत आनंदमय जीवन है, ये सारा चीज बता रहा था। बोला ऐसा इसलिए नहीं ये करता हूँ, इसलिए लॉक कर जाता हूँ, कोई ना कोई किसका नजर डाल दें उसको अपराध पाप लग ही जाएगा, कोई ना कोई घर का अंदर घुस ही जाए। और एक ही बात है, ये बहुत अच्छा कहानी है जो कि आप लोग को द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का किताब में है, श्रील प्रभुपाद इसको मेंशन करते थे, आकर्षण, जो कि स्त्री एक पुरुष का प्रति आकर्षण, एक पुरुष एक स्त्री का प्रति आकर्षण होता है। लेकिन एक सुंदरी नारी का प्रति एक पुरुष आकर्षण हुआ, आकर्षण होने का नाते कामना पोषण किया और उसको भोगने के लिए इच्छा की। इच्छा करने के बाद एक नारी बोला ठीक है, उसको डेट दे दिया, टाइमिंग दे दिया इसी टाइम पे मिलने के लिए, ठीक है। ये पुरुष तो बहुत उत्तेजित हो चुका था और वो बोला ठीक है उसी टाइम पे मिलना है। तब उन्होंने नारी ने क्या किया, अपना सौंदर्य को एक घड़ा में रखा। पहले तो बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा था, फेसबुक में लाइक कर रहा था फेसबुक में देख के लाइक कर रहा था। फिर जब किया तब उन्होंने क्या किया, अपना सौंदर्य को एक घड़ा में रखा। कैसा? उसका दूसरा जिस दिन मिलने के लिए उसको बोला था आने के लिए, उसका एक दिन का पहले उन्होंने क्या किया, एक दवाखाना में गया। दवाखाना में जाके क्या किया, मेडिसिन लिया। जो मेडिसिन खा के क्या होगा, दस्ती हो जाए, दस्ती मतलब मालमूत्र हो जाए, उल्टी। हाँ, ऐसा दवाई खाया सरा, ऊपर से नीचे से गिर रहा है, ऊपर से नीचे से। तब सारा चीज को एक ही घड़ा में इकट्ठा करके रखा, पूरा दुबला पतला हो गया। जो भी उसका फेसबुक में बाद में आया उसको कोई लाइक नहीं किया। तब ये दुबला पतला हो जाने के बाद है, जिस समय पे वो पुरुष आया मिलने के लिए, दरवाजे को ठुकराया, तब ठुकराने के बाद है वो नारी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद है वो पूछता है, वही व्यक्ति दरवाजा खोल रहा है, वही नारी दरवाजा खोल रहा है, लेकिन ये नहीं पहचान नहीं पा रहा है। और जब वो व्यक्ति पूछता है, वो नारी का नाम बताया, बोला वो है कि नहीं, बोला वो है, वो तो मैं हूं, सीधा बताते हैं मैं हूं, बोला आप नहीं हो। फिर उसको घर का अंदर ले लिया, बोला और देखना चाहते हो किसी कमरा में छिपा हुआ क्या, देख लीजिएगा। फिर ढूंढते रहा, बोला नहीं नहीं मैं हूं, आप ऐसा नहीं थे, तो बहुत अच्छा सुंदर देख रहे थे, इसलिए तो मैं बारंबार आपको लाइक कर रहा था, बाद में फिर लव किया। तो कहाँ है, बोला मैं यही हूं, लेकिन मेरा सौंदर्य को मैं एक ही घड़ा का अंदर छिपा कर रखा हूं। भाई सौंदर्य कोई घड़ा का अंदर छिपा कर रखेगा क्या? देखना चाहते हो तो व्यक्ति को बुलाया, वो घड़ा दे दिया, वो घड़ा का दर ढांकन खोला जब, तब तो रह सकता है, ये शरीर हमारा ऐसा ही, और हम ये शरीर का प्रति कितना आकर्षण हो रहा है, मलमूत्र में बना हुआ, सही। इसीलिए इसका प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। बहुत सारा चीज है इस प्रकार के, समय तो ऑलरेडी हो चुका है, और क्या बताएं। फिर भी प्रभुपाद मेंशन करते थे नवम स्कंद 19 अध्याय 17 नंबर श्लोक में, मात्रा सुस्त्रा दुहित्रा भी नाभि विक्ता सुन भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसमपि करसति। मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतने प्रबल होती है कि बड़े से बड़े विद्वान भी जौनों द्वारा आकृष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी उनका पुत्री का प्रति आकर्षण हुए थे सरस्वती का, और शिव जी स्वयं मोहिनी रूप के, और स्वयं व्यासदेव जी के शिष्य जैमिनी का बात आप लोग जानते हैं, ये बात अब बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की होता है, इसलिए इसे कैसा बचना है हमेशा के लिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कब कृपा करेंगे, ये हमारा जो मन में विकार आता है, मन से जो आता है, ये चीज कैसा हटेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।